ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में कल साइप्रस पहुंचे। हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिडेस ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिडेस ने व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत साइप्रस व्यापार साझेदारी को मजबूत करने के विचारों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा से महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिणाम सामने आए हैं। साइप्रस स्थित वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक BAO कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड ने 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता हासिल करके एक प्रमुख मील का पत्थर पार कर लिया है। एक अन्य उल्लेखनीय विकास में GIFT सिटी में NSA इंटरनेशनल एक्सचेंज ने सीमा पार पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साइप्रस में UPI सेवाएं शुरू करने के लिए यूरो बैंक साइप्रस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सीमा पार डिजिटल लेन देन का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री साइप्रस में दो दिन रहेंगे। पिछले दो दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। महाराष्ट्र में पुणे के निकट मावल तालुका में कल इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इससे लगभग 20 से 25 पर्यटकों के नदी में डूबने की आशंका है। यह हादसा तालेगांव दाभाड़े नगर के नजदीक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंडमाला में हुआ। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है और 38 लोगों को बचा लिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कहा है कि हवाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने नागर विमान महानिदेशालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से पालन और अनुशासित उड़ान संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस दुर्घटना की जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा। दुर्घटना में यात्रियों और चालक समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवाएं 2 दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया।
बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जो हमारे DGCA के मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
गुजरात के अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए मृतकों के रिश्तेदारों से अब तक कुल 250 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 62 DNA का मिलान हो चुका है और 35 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का DNA मिलान भी हो गया है। स्वर्गीय विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह बात कही।
मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद 3 जिलों में बचा है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनगणना की अधिसूचना आज राजपत्र में जारी की जाएगी। जनगणना पहली बार जाति जनगणना भी शामिल है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसराइल और ईरान ने कल रात एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए। इसराइली सेना के ईरान में नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बराबरी करने के बाद ईरान ने हाइफा के बंदरगाह शहर सहित पूरे इसराइल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर स्कोपजे टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी उपविजेता रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।